शांति। आज बहुत अच्छा एक टॉपिक है कि स्नेह की शक्ति क्या है। स्नेह का सागर स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान ब्रह्मा के तन में आकर मात पिता के रूप में बच्चों की कैसी स्नेह के द्वारा पालना करता है। महिमा बहुत सुनी है लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव चाहिए। तो ऐसे विचार आया अपने जीवन में बाबा ने ज्ञान योग धारणा और सेवा इन चारों सब्जेक्ट में किस प्रकार से मां बाप बच्चों की स्नेह से पालना करते हैं, क्योंकि स्नेह का सागर है, उसकी विधान है, विधि है। तो आप पूछेंगे कैसे पालना करता है, तो हमने अपने जीवन में देखा। देखो यज्ञ की हिस्ट्री में भी दादी प्रकाशमणि बॉम्बे में थी तो भगवान की नजर भी उन पर गई, उनको बॉम्बे से इधर लेके आया और अंत में अपने सर्व शक्तियों को विल के हाथ में हाथ देकर अपने सारे पावर देकर इस यज्ञ के मुख्य प्रशासिका बना दिया। तो ये स्नेह की निशानी है। भगवान के पास ऐसी शक्ति है, वो देखता है कहां नजदीक होते हुए भी कितने थे बड़े और भी किसी के भी मन में दिल में कभी संकल्प नहीं होगा कि बाबा के बाद कौन, कहां से बाबा उठा के ले आता है। तो ये भगवान की स्नेह की पालना, तो उसकी शक्ति कैसे काम करती है, ऐसे हमने अपने जीवन में देखा। जब हमने पूरी पढ़ाई तक हमारे जीवन में कोई दोस्त नहीं है, न कभी हमने कहीं भी ट्रैवलिंग भी नहीं किया, तो जब मधुबन में आए देखा सेवा का योग का पार्ट कैसे शुरू हो गया। तो एक दिन मनोहर दादी ने देखा शाम को, अरे आप अभी इधर ही हो, जाओ जल्दी स्नान करके आओ, योग में बैठो जाके हिस्ट्री हॉल में 6:30 से 7:30 उस समय योग होता था। दीदी मनमोहिनी भी आके बैठती थी, तो मैं उसके पहले हमको कभी पता नहीं, हमने सेंटर में कहीं भी कोई सेवा नहीं किया, ज्ञान सुना, सेवा क्या होता है ऐसा कुछ पता नहीं है। तो मधुबन आने के बाद भी सबसे पहले मनोहर दादी ने कहा कि बैठ जाओ, वहां शुरू किया। फिर विश्वरतन दादा और दीदी मनमोहिनी अमृत वेले भी बाबा और दीदी के मम्मा के गद्दी पर सवेरे सवेरे योग करते थे। कभी विश्वरतन दादा बाहर जाता था अकाउंट के कारण, कभी जोधपुर जाता था तो कहता था आप सवेरे योग करना। तो योग का हमारे जीवन में हमको भी पता नहीं था, शुरू में ऐसा कुछ नहीं था, बाहर भी पढ़ में भी मुरली सुनना क्लास करना योग का ऐसा कुछ नहीं था। तो कैसे योग का फाउंडेशन डाला, किसने डाला, मनोहर दादी को हमको क्यों, और भी बहुत थे। तो ईश्वर की स्नेह, स्नेह के सागर की शक्ति योग की देखता है, योग में शुरू किया। फिर हमने कभी किसी को कहीं ज्ञान नहीं सुनाया पढ़ते समय भी। तो यहां आने के बाद एक दिन मुरली क्लास में कोई विदेशी आए थे, दादी ने क्लास में करे उनको आप साथ में लेके बैठो ट्रांसलेट करो। दूसरे दिन से देखा मनोहर दादी कहने लगे आप इनको कोर्स कराओ, विदेशी आते थे और बाहर वाले कोई आते थे, ज्ञान का भी कैसे शुरू हो गया, कैसे बाबा सिखाता है पालना देता है। फिर देखा शुरू में एक जापान से एक ग्रुप आया और मुझे बुला के दादी ने, उस समय दादी डायरेक्ट बताती थी, और कहा आप इनसे मिलो। तो कहां बैठो, 4-5-6 थे परिवार जैसा था, तो झोपड़ी में लेके गया और झोपड़ी में बैठकर जब उनको कुछ सुनाने के लिए कोशिश किया तब उन्होंने कहा हमको इसके बारे में बताओ, पावर ऑफ थॉट, संकल्प शक्ति क्या है हमने कभी सुना ही नहीं है। और शुरू शुरू में मधु बनाने के बाद ही तो कभी हम बाहर का कुछ पढ़ा भी नहीं था, तो संकल्प शक्ति का एक घंटा हमने उसको एक्सप्लेन किया उनको। उसके बाद मैं जब झोपड़ी से बाहर आया तो मुझे लगा मैंने आज इंग्लिश में इनको कैसे सुनाया, ये कैसे बोला, और वो भी बहुत खुश। तो कैसे बाबा स्नेह का सागर कैसे सेवा कराता, वहां से स्टार्ट हो गया। तब हमको भी पावर आया कि हम इंग्लिश में सुना सकते हैं, नहीं तो हमने भी कभी ऐसे भाषण किया कुछ बोला हो, ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है लेकिन यहां ज्ञान सुनाने के लिए वो एक कला चाहिए। कैसे ज्ञान का सागर, स्नेह का सागर बच्चों को कैसे सिखाता है, तो वहां से ज्ञान सुनाना शुरू हो गया, योग का शुरू हो गया, ज्ञान का शुरू हो गया, धारणा आप पूछेंगे, इवन सेवा का और भी। उसके बाद थोड़े समय के अंदर ही, एक दो चार साल के अंदर भी, सारे विश्व के अंदर जाने के लिए 3 महीना सब कुछ मधुबन में हिस्ट्री हॉल में, मोहिनी बहन थी, गुलजार दादी थी, दादियां थी, सब पहले बैठ करके सम्मान करते थे, जाने से पहले फोटो निकाल के पहले भेजते थे एडवर्टाइजमेंट के लिए। सब हो गया, पासपोर्ट भी दिल्ली भी गया, तभी सभी एक एक टीचर बहनों ने आके पूछा कि आप क्या खाएंगे उधर, क्या चाहिए। एक बहन को मैंने कहा कि मधुबन में इतनी सेवा है तो बाहर क्यों जाना चाहिए, तो कहा सच्ची पूछो मेरे दिल से, बाहर जाने की मधुबन की सेवा है, बाहर की सेवा क्या है, वो तो आप सब करते हो। तब भी उन्होंने कहा कि विदेश में जो है 20% यहां आते हैं, 80% यहां नहीं आ सकते हैं, उनकी सेवा कौन करेगा। तो भी मैंने कहा हमारे दिल से इच्छा नहीं है, इतना ही बोला। उसने जाके दादी को बोला, बस कैंसल हो गया ही नहीं। तो भगवान अगर चाहता है शक्ति का सागर, स्नेह का सागर, फिर दोबारा कहा तो सारे ऑस्ट्रेलिया में गया 45 डेज। तो सारे विश्व की सेवा, भारत में भी हर कोने कोने में, हमने कभी भी ट्रेवलिंग नहीं किया, पता भी नहीं। तो स्नेह सागर कैसे अपनी शक्ति से बच्चों के द्वारा सेवा करता है, सेवा का भाग्य कैसे बनाता है, कहते हैं भाग्य विधाता है। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम भी सारे विश्व में कहां कहां जाएंगे, और शुरू में मन में इच्छा भी नहीं थी दिल में कि हम विश्व में बाहर जाके सेवा करना चाहिए। मधुबन में ही है, यहां बैठे ही है सवेरे से रात तक, एक मिनट भी खाली नहीं है। तो स्नेह का सागर की नीति, वो आके बच्चों के द्वारा। तब बाबा ने कहा मैं बच्चों के बिगैर कुछ नहीं कर सकता हूं, बच्चों का मुझे साथ चाहिए, लेकिन सिर्फ पात्र देखता है, भगवान को भी पात्र चाहिए, योग्य पात्र चाहिए। योग्य पात्र द्वारा देखो दादी को कहां से लेके आया, कभी सोचा नहीं, बॉम्बे में थी, और अंत समय पर। तो ऐसे बाबा योग्य पात्र को देखता है और अपनी सेवा के द्वारा बच्चों की कैसी पालना करता, बच्चों का कैसा भाग्य बनाता है। नहीं तो हमने कभी सोचा था योग में बैठ के ऐसे योग करो, अमृत वेले विश्वरतन दास दीदी कहां, और वहां सबसे लास्ट में हूं। तो एकदम शुरू से ही क्लास करने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए, हमने देखा कभी एक पुराना कोई भाई बोलता था, अरे ये अभी नए आए हैं, ये क्लास कर रहे हैं, हम किसी को बोल रहे हैं, हमने सुना। तो मैंने कुछ नहीं बोला। एक दिन मैं कहीं बिजी था, वही भाई मिला सामने, भाई जी आज मैं बिजी हूं, शाम को आज आप क्लास कराएंगे। नहीं 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 नहीं, वो तो आपका काम है। हमने कहा कल तो आप बोल रहे थे कि क्लास करने के लिए आपको भी चांस है, आप भी करो। तो भगवान भी योग्य पात्र देखता है, बड़े छोटे नहीं, पात्रता चाहिए। भाग्य कैसे बनाता है, ये स्नेह की शक्ति है। इसके बाद भी देखा बाबा ने कैसे पालना किया भगवान ने। हम जब मधुबन आया तो बाबा झोपड़ी में इसमें आता था, बाबा के कमरे में सिर्फ दादियां बैठती थी और दो चार लोग, इतना ही। बाबा का कमरा पहले छोटा था, वहां बाबा आते थे। उसके बाद हिस्ट्री हॉल, उसके बाद आंगन में, उसके बाद मेडिटेशन हॉल, उसके बाद ओम शांति भवन। हिस्ट्री हॉल से लेकर ओम शांति भवन तक एक दिन भी बाबा के सामने मैं नहीं आया और बाबा ने एक दिन भी टोली नहीं खिलाया, कभी भी खाली हाथ नहीं भेजा। हिस्ट्री हॉल से पकड़ के ओम शांति भवन तक सबसे पहले बाबा, मैं डब्बा रख करके जाता था, बुला करके भी डब्बा खोल के दृष्टि दे के टोले देता था सबसे पहले। ये पालना है, ये पालना ही आत्माओं को स्थूल शरीर से भी आत्मा को भी सशक्त बनाता है। ईश्वरीय पालना क्या है, नीति क्या है। और एक दिन भी किसी के कारण बाबा मुरली के बाद बिल्कुल स्ट्रिक्ट बैठता है तो भी मैं चुपचाप रखे भी गया, बुला करके भी डब्बा उठा करके, और जो चाहे उस समय पूछो भी, जो भी मुझे प्रश्न चाहता कुछ होता था बाबा से सीधा पूछते थे। जब तक दादी नीचे से ऊपर आती है, दादी दीदी, टाइम लगता है, हमको जो चाहे पूछो बाबा क्लियर स्पष्ट बताता। इतना फियरलेस अपनापन, जहां स्नेह होता है वहां डिफरेंस नहीं होता है, अपनापन होता है, हमारा है। एक है कहना मेरा बाबा और एक पालना दिखाती है, बोलना नहीं पड़ता है, कहना नहीं पड़ता है। तो आत्मविश्वास कहा कितना नजदीक उस समय से, हर प्रकार एक दिन भी उस दिन से। और उसके बाद भी दादी दी, जानकी दादी को भी देखा, दादी कहती थी, जानकी दादी भी, एक सेकंड मिल के जाओ, दृष्टि दे के जाओ। हमने कहा दादी आपको सुनाई नहीं देता है, बिजी, आपको पता नहीं चलता है, लास्ट लास्ट में नहीं, आप आओ सिर्फ दृष्टि दे के जाओ। ये क्यों, क्या मिलेगा उनको, स्नेह, ईश्वरीय स्नेह, ईश्वर वो इनके द्वारा। वो भी देखा कि दादी भी रोज जब नाश्ता करने जाएंगी क्लास से आते समय, देखा हमको बुला के हाथ पकड़ के ले जाएंगे, मेरे नाश्ता करने चलो। हमने कहा दादी आप नाश्ता करो, मैं आता हूं बाद में, नहीं आओ, हाथ पकड़ के ले जाएंगे। तो भगवान की पालना कैसी है, चारों सब जुड़े, एक ही नहीं, ज्ञान में, योग में, सेवा में भी, सारे विश्व की सेवा में, हर जगह पर, कोने पर। हमारे मन में कभी भी संकल्प नहीं, आज भी नहीं, हमने कितनी दफा कैंसिल किया, उसकी इच्छा। तब कहा कि वो जो चाहता है असंभव को भी संभव करता है। तब बाबा ने कल कहा था कि भान और अभिमान से मुक्त होना चाहते हो तो क्या चाहिए, करण करावन हार करा रहा है। हमारी कोई किसी की योग्यता नहीं है, योग्य पात्र बनाता है। चाहे ईश्वरीय स्नेह की पालना है, ऐसे धारणा में भी हमने देखा, भोली दादी थी शांति व मधुबन में, पहले थोड़े से लोग थे, कभी खाना कम पड़ जाता था, रोटी कम पड़ गई, हम दो चार सब एक ही जगह पर था, अलग अलग नहीं था। तो भोली दादी करे आप इधर है आप बनाओ, एक दिन नहीं रोज ही, दादी उनको बुलाओ ना वो तो खाली है। अरे आपका भाग्य बन रहा है, आप भाग्य बनाने आए हो। दुनिया में देखो ओवर टाइम करते हैं कमाई करने के लिए, अगर वो नहीं आया तो आपका भाग्य बन रहा है। तब स्मृति आती थी, हम भाग्य बनाने के लिए नौकरी करने नहीं आए हैं, ये समझ नहीं थी। तो जैसे भोली दादी ने भी कैसे भाग्य बनाने की स्मृति, ये सेवा नहीं है, मुझे क्यों करना है, उनकी सेवा मैं क्यों करूं, उनकी इनकी नहीं, आप अपना भाग्य बना रहे हो। ऐसे भी सेवा के अंदर भी सब प्रकार से धारणाएं कैसे होनी चाहिए। कभी भी बाहर का कुछ खाया, कहीं गए, कहीं भी कुछ भी नहीं, न किसी के हाथ का भी नहीं, कोई किसी ने कुछ बना के भी दिया कभी भी नहीं, जो जनरल खाना जो मिल रहा है। और बहुत दफा कहते हैं धारणा के अंदर इकोनॉमी, आप पूछेंगे आज तक भी, शुरू में जब मोबाइल आया था उस दिन से आज तक भी हमने कभी मोबाइल के अंदर इंटरनेट आज तक भी यूज नहीं किया। एक कहना होता है इकोनॉमी से चलो, इकोनॉमी के आज तक भी हमने इंटरनेट नहीं यूज किया। और एक दफा अगर मोबाइल में फोन भी करने के लिए छह, पांच से छह महीना चलता है, एक महीने में भी नहीं। इकोनॉमी कैसी धारणा होना चाहिए कि यज्ञ है, लोगों ने दिया हुआ, दान किया हुआ है, भगवान को दान किया जाता है, दिया जाता है, लेना नहीं, लिया नहीं जाता है। हमने देखा डॉक्टर आनंद करके मद्रास का था ग्लोबल हॉस्पिटल में, कभी कहा टोली ले लो, नहीं नहीं नहीं, हमको सिंपल कुछ दे दो थोड़ा सा, क्यों, ये दान किया हुआ है, भगवान को दान किया, देना होता है, लेना नहीं होता है, ये समझ नहीं, मिल रहा है यूज करो, नहीं। तब बाबा ने कहा यहां अगर आप यूज करते हो, ये दिया हुआ है, हम देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं। तो धारणा शुरू से ही हर प्रकार की धारणा सिखाया, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों सब्जेक्ट। किसने हमारे, किसी के अंदर कोई क्वालिटी नहीं, कोई योग्य नहीं थे, हम जानते भी नहीं थे सेवा कैसे करना है, ज्ञान कैसे सुनाना है, सब कुछ आके स्नेह का सागर, एक एक जगह पर कैसे कर्म करने सीखा, और हर एक से, एक एक दादी और निमित्त तो हुई थे, भोली दादी ने हर प्रकार की शिक्षा सिखाई, ये कैसे करना, वो कैसे करना, मनोहर दादी ने, शांतामणि दादी ने, मुरली क्लास के बाद जानकी दादी, चंद्रमणि दादी अलग लेके बैठती थी, अपने कमरे में बुलाती थी, 15 मिनट बैठो, मुरली के पॉइंट रिवाइज करती थी, और उसके बाद नाश्ता करने जाओ। पहले मधुबन में सभी दादियां होती थी। तो ये ज्ञान की भी धारणा, ज्ञान टपकना चाहिए, इसका चिंतन मंथन करना चाहिए, नहीं उधर सुन लिया हमने, नोट कर लिया, नहीं, फिर नपचित आज क्या सुना, इसका अर्थ क्या है, ये संस्कार किसने डाले, भगवान निमित्त आत्माओं के द्वारा, इसको कहा ये स्नेह की शक्ति है, वो डायरेक्ट नहीं करता है। तो कैसी पालना करके योग्य पात्र बनाता है, तो स्नेह की शक्ति के लिए पात्र बनना पड़ता है। और हमारे जीवन का भी लक्ष्य भी चाहिए, हमको और किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई कुछ भी देगा तो उसके पीछे कुछ तो है, लिमिटेड है। तब का भगवान की शक्ति, भगवान अविनाशी है, शिव बाबा कौन है, अविनाशी है। तब बाबा ने कहा सारे कल्प का आधार है। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताया कि पुरुषोत्तम संगम युग है, ये किसी को पता नहीं है आप बच्चों के अलावा, हम बच्चे ही जानते सिर्फ, ये सारे कल्प का आधार है, साधारण मनुष्य पुरुषोत्तम बन सकता है। क्यों, स्वयं निराकार भगवान गुप्त रूप में, साधारण रूप में, किसी को पता नहीं चलेगा इस सृष्टि पर आके कैसे कर्म करता है, इसके कारण, न जानने के कारण भगवान सर्वव्यापी कहा। और किसी ने कहा नेति नेति, पता ही कहां है, नाम लेते हैं, भगवान है, विश्वास है, कहां है वो, कौन है, अभी तक किसी के बुद्धि में भी स्पष्ट नहीं है। तब बाबा ने कहा आप बच्चे ही जानते हो, ये संगम युग का, पुरुषोत्तम संगम युग, अभी वर्तमान समय इतना वैल्यूएबल है, सारे कल्प में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जो हम चाहते हैं उसका बीज अब बोना है। तब का अब अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करते हो, सारे कल्प का आधार है। अगर अब भी थोड़ा सा अलबेलापन किया, सिर्फ वर्तमान को देखा, तो पुरुषार्थ के अंदर ज्ञान योग धारणा सेवा में अलबेलापन आता है, वर्तमान देखता है। इससे फायदा क्या है? अब भी कुछ चाहिए और भविष्य है, बुद्धि में दूरांदेशी है। मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है। प्राणी वो है सिर्फ वर्तमान देखता है, मनुष्य वो है भविष्य देखता है। उसको पता है ये कर्मों की गति है, और उसमें भी हम ब्राह्मणों को आज जो हम करते हैं कि जन्मों तक बाबा ने गारंटी दिया है। सारा कल्प बुद्धि में स्मृति में जागृत रहता है, ये करने से इसका फल ये मिलेगा। तब यहां कुछ करते समय दूरांदेशी है, तो यहां थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो वहां कट जाएगा। तब बाबा ने आज का अपने सामने लक्ष्य रखो, लक्ष्मी नारायण का कोई योग्य बनना है, जिनके पास कोई अस्त्र नहीं, जिनके कभी भी ग्लानी नहीं है। जैसे भारत के प्रेसिडेंट के लिए कोई कुछ नहीं बोल सकता है, तो ऐसे ये सारे विश्व के प्रेसिडेंट जैसे लक्ष्मी नारायण के कहीं भी कोई ग्लानी नहीं, कोई अस्त्र नहीं है। तब कहा एक भाषा एक राजा एक परिवार, वन फैमिली, वो भी अपने को राजा नहीं समझते हैं, परिवार है। तब हम कहते हैं वन गॉड वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, परिवार है, संस्था है, फैमिली है ये। तो ये कहां से ये बीज यहां? तो उसका नींव है ईश्वर की स्नेह, स्नेह की शक्ति। अगर स्नेह है हमारे अंदर, दो चीजें हैं। एक प्यार जो शब्द है ये भौतिक है, आप नोट करना, सारे साल के साकार मूल्य में 5 वर्ष के बाद रिटर्न होती है रिपीट, उस मूल्यों में एक दिन आएगा देखना, बच्चे मैं प्यार का सागर नहीं हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं। ये प्यार का सागर भक्ति का शब्द है। और हमारे देखो 7 डेज कोर्स में भी आत्मा के अंदर गुण नहीं दिखाया, दैवी गुणों में दिखाया, लास्ट में गुलदस्ते में दैवी गुण है, आत्मा के अंदर नहीं। तो स्नेह, ईश्वरीय स्नेह है ये, स्पिरिचुअल वर्ड है, आध्यात्मिक शक्ति है, ज्ञान है। तब का स्नेह का सागर है वो नीति, उसकी विधि, कैसे बच्चों की ज्ञान योग धारणा सेवा में पालना करता है, हमने अपने जीवन में देखा। नहीं तो हमारे पास कोई ताकत नहीं थी, इवन इधर नहीं, मधुबन आने से पहले भी जब मैं कॉलेज पढ़ता था वहां भी एक प्रोफेसर, उन्होंने इतना साथ दिया, सिर्फ मुरली ज्ञान सुन करके नहीं चल सकते थे क्योंकि बाहर का फोर्स बहुत है। तो वो प्रोफेसर ऐसे आता था कॉलेज से, कहता था चलो, अपने घर में ले जाता था, अकेला था वो भी, चलो दोनों मिलके खाना खाएंगे, इधर ही रुको आप, रात को जाओ। किसी ऐसे योग्य व्यक्ति का साथ भी चाहिए। तो वहां से ज्ञान में जब चले, तब से भगवान की पालना से यहां तक, अगर उसका नजर हमारे ऊपर नहीं थी, यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये स्नेह की पालना है, ईश्वरीय पालना है। तो ये चाहिए, तो जीवन का अभी भी हम अगर लक्ष्य रखें, एक बल एक भरोसा, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।
पा।